फाइव एलिमेंट्स, ये पांचों में से कहीं से घर्षण होगा ना, आकाश में आग लग जाती है, ये बिजली है, वो हवा हवा में संघर्ष होकर के, बादलों बादलों में संघर्ष होकर के, और उसमें से विद्युत पैदा हो जाती है, जो विश्व माने इतनी शक्तिशाली होती है, ये सबको जला करके खा सकते। तो ये जो बड़वाग्नि है इतनी अधिक भयंकर होती है भाई, उसका दमन ऐसे नहीं होगा, वो वर्षों में जाकर के कहीं धीरे 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 तब जाकर के शांत, वर्षों लग जाते हैं, 10-20-50 वर्ष भी लग जाएंगे उसको शांत होने, और उसमें कोई भी पड़ जाए तो क्या होगा, समाप्त,
जहाज
भी समाप्त, इसलिए समझ के उसको देख सुन करके तब चलते हैं। ये सब ताप ऐसे ही हम संसार में हमारे बहुत तरह के ताप, क्या ताप, कोई रोग हो गया, कोई शोक हो गया, खेल खेल रहे हैं अच्छे से, बड़ा अच्छा लग रहा है, और लग गया यहाँ और एक आंख अंधा हो गया, तो और पैर में लग गया, चोट लगी और पैर कट गया, तो हो गया। हम मैं मद्रास में सेनिटोरियम में मैं गया था, कुछ दिन था वहाँ किसी कारण से, किसी भक्त की सेवा करने, वहाँ पर प्रकृति का सबसे बड़ा फुटबॉल प्लेयर था, बैक पर खेलता था, कोई घोष उसका नाम था, वो उसमें दाखिल था। मैं घूम करके रोगियों को सांत्वना देने के लिए जाया करता, हमको देख करके वो रोने लगा, अरे क्यों रोते हैं, तो कहा बंगाल भर में मोहन बगान टीम में सबसे बेस्ट प्लेयर अपने समय का था, आज मुझे ये रोग हो गया टीवी, अब मैं कोई एक कौड़ी का भी मुझे नहीं पूछता, अच्छा वो कोई गुण है, कोई गुण साधारण मूर्ख लोगों के लिए ना, ये कीड़ा है ना, वो कीड़ा उसका कोई मूल्य नहीं, न तो उसके पास में पैसे थे, खर्च हो गए, और कोई पूछने वाला नहीं, घर वाले भी पूछते नहीं, कुछ दिनों के बाद बेचारा मर गया। हमने कहा जे भैया तुम कुछ सुना देखो, जो उससे तुम ठीक हो गए, कुछ दवा दारू हो ही रही है, और तुम्हारा आश्रय और भरोसा एकमात्र भगवान है, भगवान नाम है, उसको सता भी करने लगा, भगवान की कृपा हुई। तो इस तरह से ये सब जगत में ताप है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको ताप नहीं है, और संसार का कोई भी व्यक्ति उनके तापों को दूर कर दे, वो ताप कैसे दूर होगा, भगवान नाम। इसलिए हरिनाम करने पर सबसे पहले सब पापों को नाश करने वाली क्लेश रखनी भक्ति होती है, और दूसरा क्या होता है,
शुभदा।
शुभदा माने जितने प्रकार के शुभ और मंगल और अच्छे हो सकते हैं, ये नाम के द्वारा होगा, बिना नाम के द्वारा किसी का मंगल नहीं होगा और शुभ नहीं होगा, इसको गांठ बांध करके रखिए। यदि आकाश में फूल खिल जाए, यदि बर्फ से आग पैदा हो जाए, यदि खरगोश के सिंह जग जाए, यदि आप यदि अंधकार को अंधकार सूर्य को मिटा दे, किंतु भगवान भक्ति के बिना, नाम के बिना कभी भी कोई सुख और शांति नहीं हो सकता। बारी मथे बर हो ये भी, पानी को बिलो और उसे घी निकल जाए ये भी मान लेंगे, और रास्ते की फूल को लेकर के उसको घानी में दे दो तो तेल भी निकल जाए ये भी मान लेंगे, किंतु बिनु हरि भजन न भव, यह सिद्धांत अपे, शास्त्र भी ऐसा कर रहे हैं, मेरी अनुभूति कौन कर रहा है,
तुलसीदास
व्यास जी की भी अनुभूति, नारद जी की अनुभूति, अभी तक मीराबाई इत्यादि जितने लोग हैं सब की अनुभूति, हम लोगों की भी अनुभूति उसमें ले लो, हम लोगों की भी अनुभूतियां हैं, क्योंकि कुछ कर रहे हैं ना, देख रहे हैं, सब लोग सब ताप से झुलसे जा रहे हैं, हम लोग नाम के प्रभाव से,
घर में रहते हुए कुछ पता ही नहीं चल,
पापों को दूर करने वाला एक और सब सुखों को देने वाला ये दूसरा, ये चंद्र का ये कारण, चंद्र के गुण है, क्या करता है, चंद्र माने विधु हुए दो, एक मूल चंद्र कृष्ण चंद्र, और दूसरे चंद्र हुए अंधकार को दूर करने वाला। और एक आदमी को बहुत ये सूर्य से ताप, अभी दिन आज बड़ी गर्मी है ना, और पूर्ण चंद्र हुआ है और शीतल ऊपर रात में हवा थोड़ी थोड़ी धीरे मंद मंद बह रही, और ऊपर छत पर सो जाओ, चंद्र उदित होने पर कैसे आराम मिलेगा। बिजली का पंखा और ये सब उतना आनंददायक नहीं होगा जितना चंद्र। दूसरी तो इसके लिए करें, ये पहला बात कृष्ण चंद्र। कृष्ण चंद्र क्या करते हैं, अखिल रसामृत मूर्ति, अखिल रसामृत की मूर्ति। और चंद्र क्या है, वो भी अमृत की मूर्ति है। एक समय देवता लोग, ब्रह्मर्षि लोग चंद्र की उपासना कर रहे हैं। आप समस्त रसों के प्रदाता, जितनी औषधियां विश्व में होती हैं सब में औषधियों में अमृत भरने वाले आप हैं। आप ही सब चीजों को ठंडा करने वाले हैं, शीतल करने वाले हैं। इसलिए हम आपकी सोम रस से सोम की उपासना कर रहे हैं। सोम रस क्या है, देवताओं का कोई काम करने का पेय, उससे आपकी हम सोम की माने चंद्र की उपासना कर रहे हैं। वही जड़ी बूटियों में सब में ये सब चीजें देते हैं, अमृत देते हैं। अब ये तो चंद्र में एक अमृत देने का गुण, क्योंकि वो अमृत रस में है इसलिए देते हैं,
प्राणों का संचार,
प्राणों का संचार भी करते हैं इसलिए चंद्र। और दूसरा क्या, सुख एक क्लेश को दूर करने वाले और सुख को देने। कृष्ण में क्या है, जगत में जितने प्रकार के ताप हैं, दुख हैं, सबको दूर करने वाले और अंत में अपने रूप के द्वारा, अपनी लीलाओं के द्वारा समस्त जीवों को आनंदित करने वाले वो मूल विग्रह हैं। इसलिए विधुर
जय,
कौन जय हो, कृष्ण चंद्र जय। चंद्रमा का उपलक्षण में केवल कहा गया, केवल उपमान है। अब वो कैसे हैं इसके लिए बताओ, अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण चीज, अखिल रसामृत की अखिल रसों के विषय भी हैं, और पीछे से बतलाया एक आस्वाद्य भी है
और
आस्वादक भी है, दोनों भी हैं, दोनों तरह से। एक परम करुण है और दूसरे रसिकेखर। कृष्ण को यदि रसमय और क्या है वो रस, राधा और कृष्ण दोनों मिलकर
रसराज,
रसराज और महाभाव, तो भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि राधिका के साथ सप्तमी युक्त रहते, इसलिए महाभाव स्वरूप भी आ गए और रसराज भी आ गए। परम करुण है इसलिए जगत में अवतीर्ण होकर के जीवों को ये सब चीजें देते हैं, अनुभूति कराते हैं। और रसिक हैं इसलिए भक्तों को आनंद देते हैं और आस्वादन भी करते हैं, राधा भाव आस्वादन करते हैं। और कृपालु हैं इसलिए अनर्पित चार प्रेम को ये देते हैं। तो अखिल रसामृत मूर्ति वह प्रश्न और रुचि रुद्ध तारका पाल, तीन प्रकार के लोग हो या तीन प्रकार की गोपियां हैं, एक साधारणी, एक विशेष मुख्य और एक सर्वारा सबसे श्रेष्ठ, तीन प्रकार। इसमें राधिका जी स्वर सबके श्रेष्ठ हैं, ललिता प्रभृति जो हैं अष्ट सखियां ये प्रधान, और साधारणी और कोटि कोटि गोपी। अब ये तीनों के लिए कर रहे हैं अलग अलग। ऐसे कृष्णचंद जी रसामृत मूर्ति वाले हैं, परम सुंदर हैं, मनमत मनमत हैं कि प्रसिमर, प्रसिमर माने क्या होता है, व्याप्त होने वाले, जैसे हवा धीरे धीरे चलते ही चारों जगत जगत में ये व्याप्त है। ऐसे कृष्ण की रुचि, रुचि माने
कांति
सौंदर्य गुण इत्यादि, उनका ये उनकी प्रभा ये फैल करके क्या करती है, रुद्ध तारका बाली
सबको वशीभूत कर दिया।
रुद्ध माने वशीभूत करना, बस रोक लेती है, ठहर जाओ, मैंने बसी मुक्त कर लेती है। इनको तारका पाली, गोपियों के पाली को, पाली माने समूह, उनके समुदाय को, समस्त गोपियों को, साधारण गोपियों को स्तंभित कर देते हैं, वशीभूत कर देते हैं। अथवा इनमें प्रमुख है तारका और
पाली,
उनको रुद्ध कर, माने ऐसी साधारण गोपियों को रुद्ध किया। चंद्र के पक्ष में क्या होगा, रुचि रुद्ध तारका, तारका माने तारकाश और पाली माने समूह, समस्त तारकाओं को अर्थात नक्षत्रों को, तारिकाओं को एकदम विशेष करके वैशाख के महीने में, वैशाख होता है, वैशाख किस लिए कहा जाता है, जब विशाखा नक्षत्र के एकदम निकट में उसके ऊपर में चंद्र आ जाते हैं तो उसको कहते हैं वैशाख। इसी तरह से सब में है, बारह महीने में बारह विशेष ग्रहों के निकट में चंद्र आने पर उनका नाम वैसा ही रखा जाता है,
महीने का नाम,
महीने का नाम ऐसा ही है। तो ये वैशाख महीने में आते हैं तो सबसे कम दूरी पर विशाखा के पास में पहुंचते हैं, और ऐसा कभी भी किसी भी बारह महीने में किसी के निकट नहीं जाते, इसलिए विशाखा के ऊपर में सबसे महत्व। किंतु चंद्र समस्त शाख ये ताराओं के बीच में रहते हैं, यदि रात न हो और अंधकार न हो तो तारा सब दिखेंगे, नक्षत्र मंडली दिखेगी नहीं, किंतु जब अंधकार थोड़ा रहता है तब चंद्र के उदित होने सब दिखते हैं, उनको रुद्ध करके रखते हैं, इसलिए तारका पाली। और किलित श्यामा ललित, कलित यहाँ पर किलित लिखती है, कलित श्यामा ललित, कलित माने क्या, आत्मसात कर, आत्मसात माने क्या,
अपना
प्रियत्व हेतु एकदम अपना लिया है, इसलिए यहाँ पर श्यामा और सुहित और नहीं ललिता माने
सपक्ष
और सुहित पक्ष, उनकी जो प्रधाना है उन दोनों को आत्मसात बड़े प्रेम से, किस लिए, हमको जो प्रधान है उसे मिला देगी, इसलिए बिना इनके कृष्ण उनसे मिल नहीं सकते, इसलिए कलित। अच्छा चंद्र के पक्ष में क्या हुआ, श्यामा ललित, रात का जो विलास होता है चंद्र अंधकार जब भी हो जाए अमावस्या रात, तो उस समय चंद्र खो ही हो तो उस समय में ये सब तारकाएं दिखी
जाए,
उस समय में रात्रि का विलास है, ताराओं का नक्षत्र मंडल, एक सुंदर सी नीली साड़ी और उसमें स्वर्ण से बिंदु सब बनाए गए हैं और एक एक चमक रहे हैं, उस समय छोटा सा एक वो जो चमकता है ना वो भी रात में कैसा लगता है, झकझक झकझक करता है, जो चंद्र को और शोभा को बढ़ाने वाले ये सब हैं, चंद्र उनको श्यामा माने रात्रि का, श्यामा रात्रि का, और ललितो माने, ललित माने शोभा, उनके शोभा को विस्तार करने वाला ये चंद्र है। और कृष्ण के पक्ष में क्या होगा वो बतलाए, ललिता और श्यामा राधा प्रियां, और राधा के जो प्रिय हैं प्रियां, राधा के अत्यंत प्रिय। अच्छा वहां पर राधा का अर्थ क्या होगा चंद्र पक्ष में,
अनुराधा,
राधा नाम विशाखा का अनुराधा है, राधा के समस्त गुण विशाखा में, इसलिए उनको अनुराधा भी कहते हैं और राधा नक्षत्र भी कहते हैं। तो ये राधा नाम विशाखा का, इसलिए वैशाख महीने में जब निकट आते हैं तो उनके निकट अर्थात राधा के निकट में रहते हैं, इसलिए चंद्र के पक्ष में जो होता है। तात्पर्य क्या, किस तरह से समस्त गोपियों को आकर्षण करने वाले हैं, उसी प्रकार से समस्त जीव जितने भी जंगम स्थावर पुरुष जोशी सबके चित्त को आकर्षण करने वाले हैं ये कुछ, किंतु कब, जब हम योग्य होंगे ऐसे सब, जैसे एक रोगी है उसको हो गया है कमला रोग, पीलिया रोग जॉन्डिस, जॉन्डिस वालों लोगों को मिश्री या कोई भी मीठी चीज मीठी नहीं लगती, कैसी
लगेगा
कड़वी लगती, और उसको पीला ही सब कुछ, सफेद भी लाल भी नीला भी सब उसको, यहाँ तक उसका शरीर जिससे लग जाएगा ना तो वो पीला हो जाएगा,
सब करेगा पीला,
उसका सब कुछ जितना है वो सब पीला हो जाता है, ये पीलिया रोग। अभी हम लोग पीलिया रोग के मारे सब लोग विश्व के सब लोग, इनमें से कुछ लोगों का पीलिया रोग अच्छा हो रहा है मिश्री का स्वादन करने, और जो लोग कृष्ण नाम कृष्ण लीला चरित्र कथा इत्यादि का सेवन नहीं करते उनका पीलिया रोग और बढ़ जाए, यहाँ तक कि एक दिन वो
राम नाम से
वो ऐसा भी, इसलिए यहाँ कह रहे हैं किस विषय में लिखा है
राधा प्रियान विदुर जी,
तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, जिनको विद्या का नशा चढ़ा हुआ है रोग है पीलिया रोग, उनको मिश्री मीठी नहीं लगती, ऐसे ही ये भगवान का नाम अत्यंत सुंदर होने पर भी मीठा होने पर भी कंस को और जरासंध को
शिशुपाल
दंत वक्र और प्रहलाद के पिता
हिरण्यकश्यप
को इत्यादि को मीठी नहीं बड़ी कड़वी लगती है, और भक्तों को बड़ी मीठी लगती है नारद इत्यादि, नारद इनके लिए बड़ा मीठा। हम लोगों को अभी जो थोड़े से अब भजन करने लगे हैं गुरु जी से लेकर के, उनको तो बड़ी मीठी लगी, और संसार की कोई भी चीज कड़वी लगी, और जिनको ऐसा नहीं है संसार की चीज उनको मीठी लगेगी और ये चीज कड़वी लगेगी, किंतु अंत में उनको पछताना पड़ेगा, इसलिए भगवान नाम भगवत कथा इत्यादि का श्रवण करना ही जीवन का प्रधान और एकमात्र लक्ष्य है, नहीं तो इससे वंचित हो जाने पर हम सबसे वंचित हो जाएंगे, इन कथाओं का रसास्वादन भी नहीं मंशा भक्त
नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेमराजते कृष्णाय कृष्ण
उसके संबंध में ही हम लोगों ने
उसके संबंध में हमने क्या बताया, काम गायत्री काम के लिए जा पाता हूँ, थोड़ा सा संक्षिप्त में बदलाव तो कि पश्चिमी फलित श्यामा ललिता राधा प्रयाण इसका ये इसलिए बताया ये अपराधिक नवीन मदन वृंदावन में कृष्ण और वो सबके चित्त को आकर्षित करने वाले यहाँ तक ही अपने को भी आकर्षित करते, इसलिए ये श्लोक में तारकाकाली श्यामा ललिता और श्रीमती राधिका जी को भी आकर्षित अपने रूप से सौंदर्य से गुण से ये करते हैं, इसलिए सर्वचित्त आकर्षक साक्षात मनमत के लिए इसका इसकी व्याख्या की। श्रृंगार रस राजमय मूर्ति का कृष्ण कैसे हैं, श्रृंगार श्रृंगार मैंने क्या श्रृंगार मतलब सिंग जो रसों में सिंग के ऊपर में सबसे श्रेष्ठ ऊपर में उनका स्थान विराजमान रस राज रसों के राजा हैं कृष्ण, रसों मैंने ये 12 रस जो हैं गौ और मुख उन सबके राजा हैं, ये कहाँ पर बैठेंगे सबके सिंह पर सबसे उन्नत स्थान पर ये बैठते हैं कौन ये कृष्ण, इसलिए श्रृंगार रस राजमय मूर्ति धर अतएव आत्म पर्यंत सर्वचित्त, इसलिए सर्वचित्त सबके चित्त को हरण करने वाले हैं, यहां तक कि आत्म पर्यंत अपने को भी अपने को अपने देकर के भी उनका चित्त हरण हो जाता है, अपने को देकर के अपने ही लुप्त हो जाते हैं अपने रूप पर लुप्त हो जाते हैं, इसलिए गीत गोविंद में इसका एक प्रमाण दिया है, भागवत में भी इसके भी और उसमें भी कहा है विश्वेशां अनुरंजनेन जनन आनंद इंदीपन श्रेणी श्याम कोमल कोमलै उपनयनै गैर अनंगो उत्तम स्वच्छंदमयी सुंदरी अभिता प्रत्यंगमालिंगिता श्रृंगार सखी मूर्तिमानीव मधौ मुग्धो हरि क्रीडति, ये लिए हैं गीत गोविंद से। विश्व ईशा अनुरंजने यहाँ पर अतएव आत्मपर्यंत सर्वचित कहा सर्वचित कहा कहने से कुछ खटर पटर लग जाता है, क्या लगता है सब लोगों के चित्त को हरण करने वाले हैं कि नहीं है, किंतु विशेष विशेष में विशेष विशेष एक ही रूप में नहीं,
जैसे बेणू
इसीलिए कह रहे हैं सर्व माने
वहां पर तो
इस भाव से जिसके अंदर में है उनको ही चित्त को हरण करना, सबका नहीं,
जिन सबके अंदर ये भाव है उन सबको
और लोगों को अच्छा लग सकता है, चित्त को हरण करना माने क्या, जब चित्त हरण कर लिया तो उसका अपना कुछ रहा नहीं तो वो प्रमत्त हो जाएगा, तो वहां पर पशु थे गायें इत्यादि सब सुन रही बछड़े सुन रहे किंतु उनका चित्त एकदम ऐसे नहीं ले लिया कि वो एकदम पागल हो और कृष्ण के पास में दौड़ करके चले गए, वो गोपियां कृष्ण की वंशी ध्वनि इत्यादि ये सुन करके सबका चित्त मोहित हो जाता है। ये इसलिए कहा कि जिसमें जो भाव है कृष्ण को देख करके उसी भाव से किंतु आकर्षित, जैसे कृष्ण में सब रस है ना, मधुर में सब रस है, शांत दास सत्य वात्सल्य इत्यादि सभी, तो गोपियों में तो सब है, गोपियां आकर्षित होती हैं। अब कृष्ण में भी सब रस है, वो सब रस के आस्वादक आस्वाद्य है और सबके आस्वादक भी है,
विषय आश्रय हुए,
विषय भी है किस रूप में, कृष्ण आश्रय, तो विषय के रूप में एक ही कृष्ण को देख करके विभिन्न लोगों का कृष्ण के प्रति विभिन्न भाव पैदा होता है, एक रूप में नहीं होगा। घर है कोई पुत्र के रूप में, कहीं सखा के रूप में, कभी दास प्रभु के रूप में, कहीं प्रिय के रूप में, विभिन्न विभिन्न रूपों में सबके चित्तार हो सकते हैं। किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं गोपियों जैसे सबके चित्तार नहीं, जिनमें यह भाव होगा उसी को, उसी के लिए ऐसा सर्वचित कह रहे, दूसरों के लिए नहीं। यशोदा मैया सुन करके या और सब गोपियां हैं जो मातृभाव भाव पर, या सखा हैं या दास हैं ये सब सुनेंगे, या दुग्ध भाव वाले जो हैं कंस इत्यादि, उनको कैसा होगा, उनके चित्त को हरण होगा, वो नहीं होगा। इसलिए जिसमें जैसा भाव है उसके अनुरूप ही सबको एक समान नहीं होगा। इसलिए सबसे अधिक चित्त हरण होता है उन गोपियों का जो उस भाव वाली है, मधुर भाव वाली, उन्हीं को आकर्षण कर ऐसा करेंगे चित्त जैसे कि वो सब छोड़ छाड़ करके कृष्ण के समीप आ जाए। इसलिए कृष्ण का नाम भी मधुर है, कृष्ण की कथा भी मधुर है, किंतु किसी को अच्छी लगती है खूब, किसी को कम अच्छी लगती है, किसी को सुहाती नहीं है, किसी में ममता और रुचि नहीं होती है, और किसी को देख करके क्रोध आ जाता है, ऐसा सब भावों के ऊपर में निर्भर करता है। तो यहां पर सर्वचित्त हरण ये बताया, जो ऐसी गोपियां जिनके हृदय में ऐसे भाव हैं, ऐसे सब गोपियों को ही उन्होंने आकर्षित किया, क्योंकि श्रृंगार रस के संबंध में कह रहे हैं। सबसे याद रखना चाहिए श्रृंगार रस राजमय मूर्ति धर, अतएव आत्मा पर्यंत अपने को भी जब वो श्रृंगार रस के उपयुक्त मूर्ति धारण करते हैं अपने को भी आकर्षित कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, राधिका इव, जैसे राधिका जी को कृष्ण रूप आस्वादन करने की लालसा होती है, ऐसे कृष्ण को भी स्वयं राधिका बन करके उस रूप को दर्शन करने की या आस्वादन करने की इच्छा। ऐसे ही सब माने यहाँ पर क्या उस भाव वाले, नहीं तो सभी लोगों को उसी रूप में हो जाता, सखाओं को भी, माताओं को भी, सबको हो जाता, ऐसा नहीं। विश्व अनुरंजनी विश्व एक शाम मैने ऐसा मैने गोपी, विश्व माने सर्व, विश्व माने विश्व नहीं, यहाँ पर विश्व माने भी होता है सर्व,
बहुत से विश्व
विश्व माने सर्वम, जैसे समूह होता है या सब होता है, ऐसे ऐसा ये जो सब हैं ये माने गोपियां, अनुरंजन न जनयन्नानंद इंदीव, अनुरंजन न अनुराग के द्वारा रंजन करके, अनुराग से लेकर के महाभाव इत्यादि सब, उसके द्वारा अपने रूप के द्वारा सबके अंदर में अनुरंजन करते हैं। अनुरंजन माने उसके चित्त को रंग देने का नाम है अनुरंजन। अपने भावों से, अपने प्राप्ति कराने के भावों से सबको एकदम उसके हृदय को एकदम रंग दे गए। जैन आनंद और उनके हृदय में आनंद उत्पन्न कर देते हैं, आनंद उल्लास यहाँ उत्पन्न कर देते, उत्कंठा जाकर कर देते हैं। किसके द्वारा? श्यामल कोमलांग कोमलई रूपनयनम अंगई अनंगो उत्सव। वे अपने अत्यंत श्यामल और कोमल अंगों के भावों को उत्पन्न करके उनके अंदर में आनंद और फिर आनंद के द्वारा उनके चित्त को अनुरंजन करके अनंग उत्सव प्रस्तुत कर देते हैं। स्वच्छंदम ब्रजसुंदरी भी अभित प्रत्यंग मालिंगित। स्वच्छंदम, स्वच्छंदम मैंने शांत दास सख्य बासल लत, जितने भी बाधाएं, जितनी भी बाधाएं हैं उन सब बाधाओं को पाकर स्वच्छंद रूप से, जैसे गोपियां कृष्ण के साथ में मिली हुई ऐसे स्वच्छंद रूप से कृष्ण से मिलकर अब कोई भी अंदर में बाधा विघ्न इत्यादि समाज कुल जाति अथवा अंग संबंधी या कोई भी अपाधा नहीं रही, इसलिए इन सब को दूर करके सब प्रकार से प्रत्यंग मालिंगित कृष्ण को अपने समस्त अंगों के द्वारा समस्त अंगों को आलिंगित करके मूर्तिमान, एकदम मूर्तिमान जो श्रृंगार से स्वरूप कृष्ण हैं, हे सखी ये हरि मुग्धो मधौ मुग्धो हरि कीर्ति, ऐसे जो हरि हैं मुग्ध होकर के स्वयं स्वयं भी मुग्ध हो रहे हैं, मुग्ध होकर के मधौ ये वसंत ऋतु में क्रीड़ति क्रीड़ा कर रहे हैं। यहाँ पर मुग्ध शब्द के लिए कहा कि अपने भी उसमें मुग्ध हो जाते हैं, और की तो बात, गोपियां तो मुग्ध हो ही जाती हैं, अपने आप भी उस रूप को देकर के मुग्ध हो जाते हैं। लक्ष्मी कांतादि अवतारे भरे मोह, इनका यह श्रृंगार प्रारूप ऐसा है, और की तो बात क्या, लक्ष्मी कांत जो नारायण आदि आदि मैंने वहां से आरंभ करके और नीचे पर्यंत जितने भी तत्व वैभव अवतार हैं, ये विष्णु तत्व हैं या भगवत तत्व हैं, उन भगवत तत्वों का सबका ही आकर्षण उसमें कर देते, वो सभी लोग कृष्ण के रूप को देकर के नहीं। इसमें बलदेव प्रभु भी और चार वासुदेव शंकरसन प्रद्युम्न अनुरुद्ध इत्यादि भी शंकरसन, ये सभी और वहां से लेकर के नारायण और नीचे वाले जितने हैं सब जितने भी भगवत तत्व हैं, और फिर लक्ष्मी आदि उनकी जो लक्ष्मियां हैं नारी गणों को भी आकर्षण करते हैं, ये कृष्ण का आशा। इसके लिए श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 89 अध्याय से एक श्लोक बतला है, कृष्ण के से महासंकर्षण मूल संकर्षण से महासंकर्षण, और उनसे नारायण है कृष्ण, वहां पर जो वासुदेव हैं वासुदेव से ये नारायण है, उनका वैभव प्रकार और बाद में कर्णाब्दशाही। अब ये कर्णाब्दशाही विष्णु ही भूमा पुरुष हैं, यही भूमा पुरुष महाकालपुर में रहते हैं।
शब्द तो ये
भयानक लगता है किंतु भयानक नहीं, किंतु भयानक जैसा नृसिंह जी को देखने सुनने से होता है बहुत भयानक, किंतु बड़े कोमल हैं, किनके लिए भयानक, दुष्टों के लिए भयानक। ऐसे ये महाकाल तुरंत ही हो, समुद्र लहर आ रहा है मां, और उसमें अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है, और उसके बीचों में
तो कृष्ण का भजन करने वाले ये भयानक स्वरूप जो है, ये निश्चय के
भयानक वस्तुओं के अंदर में वो है ना,
तो इसे भजन में तो कोई बाधा नहीं।
वहाँ पर भजन का क्या, भजन करने वाले भजने जाएंगे कि ना,
उनका जो मंत्र जब करते हैं
उनका वो ब्रह्मा इत्यादि जैसे लोग हैं उनका
मंत्र
तो हम लोग इसलिए जपते हैं कि हमारे विघ्न बाधाएं थी, बस इतना ही। जो जितने असुर लोग हैं उनको दे करके डरते हैं, विघ्न बाधा भी कर दें हम लोग किस लिए, उनका भजन उपासना करते उनको पाने के लिए नहीं, हम लोग को बस इतना ही। यहाँ पर एक लक्ष्मीकांत इत्यादि के लिए और उनकी लक्ष्मियों के लिए हर चित्त हरण करते हैं ये कृष्ण, उसके लिए यह कथना है। भगवान तो शक्तिमान है, पुरुष रूप है, तो पुरुषों का पुरुषों के प्रति ऐसा रूप देख करके उनका भी चित्त आकर्षित हो जाता है, ये आश्चर्य की बात है। किंतु ये ऐसा हो जाता है, कृष्ण की भी इच्छा होती है अपने रूप को देख करके, मैं स्त्री बनकर गोपी बनकर के राधिका के समान इस रूप का आस्वादन, कृष्ण को खुद हो जाता है, तो उनके अवतारों का क्यों नहीं होगा। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसा, ये सब बातें ये सब होने के पहले चैतन्य चैतन्य पहले कहीं भी नहीं हो सकता है, गोस्वामी के ग्रंथों में कहीं हो, रूप गोस्वामी अथवा जी गोस्वामी इत्यादि के ग्रंथों में जरूर होगा, मैं तो ये नहीं, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी से उन्होंने कहा, किंतु इस रूप में स्पष्ट रूप में इस तरह से आप उसी को शास्त्र से प्रमाण देकर के बतला रहे हैं किस प्रकार से कृष्ण का रूप, कौन रूप,
ब्रजनंदन
श्रृंगार। कुछ लोग कहते हैं जो गोलोक में वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में गोकुल में कृष्ण का जन्म नहीं होता,
गोलोक
गोलोक और गोकुल में उनका जन्म नहीं होता,
जन्म केवल इसी लोग का,
केवल वहां अभिमान के रूप में होता है, जैसे कृष्ण हमारे पुत्र हैं बस। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं वहां पर पार्थिव भाव है तो इसलिए वहां पर श्रृंगार रस भी नहीं होगा, श्रृंगार रस होगा तो नहीं होगा, इतने श्रृंगारस भी नहीं है, पार्किंग में उड़ावना भी नहीं है, श्रृंगारस भी नहीं है, तो वहां क्या है, है क्या,
भाव
क्या भाव। अरे मेरे समझ से तो जो वहां लीला है ही नहीं है, वहां पर ये कैसे उतरेगी, उतरती है तो या प्रकटित होती है, प्रकाशित होती है, तो वहां जो लीला है ही नहीं है तो यहाँ पर कैसे प्रकट होती है, इसलिए वहां जो लीला है वहीं पर उसी का ही यहाँ पर प्रतिबिंब हो सकता है या प्रकाश हो सकता है। हमारे गोसाई ने कहा जो वहां लीला है यही पर लीला, प्रकट और अप्रकट का अंतर है, यहाँ पर दिखा जाता है वहां पर दिखा नहीं जाता।
संदर्भ में कहा है कि ये वहाँ ये नहीं है, तीन महीने का ये नहीं, बुद्ध का माधुर विरह जो विप्रलम्ब है ये नहीं है, रोज दिन ऐसे ही अनुभव होता है कि आज ही कृष्ण मिले, ऐसे ब्रजवासियों को अनुभव होता है।
किंतु ऐसा नहीं जो है ही नहीं, पर एक न कोई लाखों प्रकोष्ठ हो सकते हैं, अनंत प्रकाश उसके हो सकते हैं, एक प्रकोष्ठ में ये भी होगा
क्योंकि नित्य प्रकाश है, तो
बोला श्रृंगारी रस नहीं होगा तो फिर होगा क्या, इसे जरूर होगा, उनका जन्म भी है,
इधर जन्म है, जन्म है, जन्म का भाव है,
अब वहाँ पर जाएंगे तो विशेष रूप से बताया,
हमने पहले बताया था
जन्म का जब नहीं तो उसकी छाया यहाँ पर नहीं हो,
आपने पहले बताया था जन्म का भाव है, अरे आपने देख करके बताइए।
अच्छा फिर बीजात्मजा में युवयो दिदिक्षुना मयोपनीता भूमिधर्म गुप्तये कलावतीर्णा अवने भरात सुनान हत्वेह भूयस्त्वरे त्वयेतं मंत्री ने द्विजात्मजा में युवयोर दिदिक्षुना ये बात है। कभी द्वारकापुरी में जब कृष्ण थे बलदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध इत्यादि थे तो अंतिम समय में जब कृष्ण को जाने का अप्रकट लीला करने का हुआ उसके कुछ दिन पहले एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी उसको लड़का होता था उत्पन्न संतान और साथ ही साथ में वो संतान मर जाती तो ऐसे ही उसके एक दो तीन चार पांच लड़के हुए वो मर गए। तो वो ब्राह्मण प्रत्येक मरने के बाद में बच्चे को लेकर सब उसका लेकर के शरीर और राज दरबार में आ जाता और वहां पर पता जी या राजा के पाप से हमारे लड़के मर
अकाल मृत्यु हो
ये राजा लोग पाप करते हैं और भोग करना पड़ता है प्रजाओं को और कुछ गाली गलौज करके निंदा इत्यादि करके चला वहीं पर छोड़ दिया। ऐसे कुछ दिन करने के बाद में एक दिन फिर लड़का उसका जन्मा और फिर वो मर गया। वो वहां आकर के और विलाप करने लगा विलाप करके कृष्ण को बलदेव को प्रद्युम्न अनिरुद्ध सबको ये सभी पापी हैं ऐसे इन्हीं के पाप से ही तो ये हमारा कैसा लड़का ये कहने लगा। अर्जुन वहां पर थे उनको पता लगा अर्जुन आकर के कहा सांत्वना दिए जिसे आप विलाप मत कीजिए और उनको दोष मत दीजिए आपका लड़का इस बार होगा जब होने को होगा जब आप अपनी माता के गर्भ में आएगा उसने मुझे सूचित करेंगे और मैं ऐसा उपाय कर दूंगा जो लड़का मरेगा। मुझे बड़ा बचाने वाला आ गया स्वयं कृष्ण नहीं बचा सके प्रद्युम्न जी अनिरुद्ध जी संकर्षण बलदेव भी नहीं बचा सके और तुम बचा लेगे जा जो अपने काम में जाओ यहां मत आना हमारे पास हमने बहुत लोगों को दे इनको झटक दिया। उन्होंने कहा कि नहीं तुम ऐसा मत करो मैं प्रतिज्ञा करता हूं यदि तुम्हारे बच्चे को मैं नहीं बचा दिया तो मैं आदमी चल करके मर जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं और यदि होगा समय तो तुमको बताऊंगा तुम देख ये गर्भ चला गया और समय पर जब उसकी पत्नी गर्भवती हुई तो अर्जुन को खबर दी कि हमारी पत्नी को बच्चा होने वाला है तो वो आए और आकर के इसीलिए द्वारका में ठहर गए थे और जिस घर में सौरी गृह था मैं जहां पर बच्चा होने वाला सौरी गृह पहले सौरी गृह कहते थे अब तो सौरी गृह अब तो अस्पताल में और कहां कहां होता
है प्रसूति गृह लिखा रहता है।
हाँ प्रसूति गृह पहले होता था घर में
अच्छा
तो प्रसूति गृह में वो थी और वहीं से अपने बाणों से ऐसा बनाया जिसमें हवा भी प्रवेश करके उसके पितर में मर जाए और खुद धनुष बाण लेकर के वहां पर पारा देने लगे दिन रात। ठीक समय पर बच्चा पैदा हुआ और वो वहां पिया रोया और रो करके बस शरीर ही न जाने कहां चला गया और बार बार तो बच्चे रह जाते थे दिखाई पड़ते थे मरे हुए इस बार दिखाई नहीं दिया और शरीर ही बोला कहने कहां चला ब्राह्मण देखकर के अर्जुन को और उनकी बड़ी निंदा करने लगा बड़ा धनुर्धर हुआ छोड़ दो गांधी को दूसरे को दे अपनी बल की डिंग मारता है काम आने पर कुछ भी काम नहीं होता सारी कृष्ण बलदेव ही नहीं रक्षा कर सके वो सब नहीं रक्षा सारी गदुओं की बड़ी भारी सभा विशाल वो नहीं रक्षा कर सकी तुम क्या रक्षा करेगा जाओ चूड़ी उड़ी पहन करके घर में बैठ चलो ऐसे ऐसे बातें कहा। तो अर्जुन ने देखा जिसकी शक्ति अच्छा मैं देखता हूं ये कहां गया, इसने पृथ्वी की जहां तहां हो सकता है वो सब देखा। इसके बाद में जमपुरी गए, वहां पर भी देखा, वहां पर भी पता नहीं। फिर इंद्रपुरी इत्यादि जो जो सब जीवों के जाने की जगह है वो सब को देखा, कहीं भी उनको पता नहीं। अंत में मुरझाए हुए मन से पृथ्वी लोक में द्वारका में आए और सीता बनाने लगे, और सीता बनाकर के धनुष समेत उसमें जल करके मर गए। उस समय कृष्ण बोले कि भाई ऐसे ऐसी प्रतिज्ञा क्यों करता है, महाभारत में भी तुमने दो एक बार ऐसी प्रतिज्ञा की व्याग्रस्त को बद त्यागे कर बड़ी मुश्किल से तुम्हें बचाया, अब तुमने ऐसी प्रतिज्ञा कर दी जैसे इसलिए बड़ा मुश्किल है। अच्छा ठीक है अभी मरो मत, चेष्टा तो हम करते हैं, तुम हमारे साथ में चलो। ये कहकर के दिव्य घोड़े और दिव्य रथ लिया, और दिव्य घोड़े लगाकर दिव्य माने क्या जो कि हवा पानी जल वायु आकाश अग्नि इत्यादि से भी अछूते रहते हैं, बिना हवा के भी जीत जाएंगे, अग्नि में भी नहीं जलेंगे, बिना अग्नि के भी जीवित रहेंगे। हम लोग बिना आग की जीवित रहेंगे कि नहीं, बिना आग के जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे, बिना हवा के भी नहीं, बिना पानी के भी नहीं, बिना मट्टी के बिना भी नहीं, बिना आकाश के भी नहीं जीवित रहेंगे, प्रकृति के बिना भी। तो ये सब ऐसी चीजें ऐसा किया कि इनकी कोई भी हेल्प लेना पड़े, अर्थात अपराध पड़े और रथ भी है।